आज के इस प्रसंग पर मुनि श्री क्षमा सागर जी के रहते हुए मैं बोलूं, ये सबसे बड़ी धृष्टता होगी मेरी, जिसके विषय में ये भी सीढ़ी भी नहीं जानता हूँ, उसके विषय में मैं आपसे क्या बात करूंगा। महाराज श्री ही आपके सामने हैं, अच्छे से आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं, करेंगे भी, लेकिन उन्हीं की ही आज्ञा अनुसार थोड़े से समय के लिए मैं आपके बीच हूँ। जो ये संगोष्ठी रखी गई जैन विज्ञान विचार संगोष्ठी, इस संगोष्ठी का मेन उद्देश्य जो हमारे जैनाचार्यों ने आज से हजारों वर्ष पूर्व
भूति के अनुसार कुछ जो विस्तार या संसारी प्राणी के लिए जो आत्म कल्याण की विद्या उन्होंने हमें दी, उसका नाम ही जैन विज्ञान है। इस जैन विज्ञान के ही प्रचार प्रसार के लिए और आप और हम उससे परिचित हों और समझ करके इसे ऐसा ना माने कि जैन धर्म कोई परंपरावादी या रूढ़ी से चली आई मान्यताओं को मानने वाला धर्म है, ऐसा कदापि नहीं है। इसमें एक एक बात बड़े अच्छे तरीके से जो विज्ञान की कसौटी पर खरी उतरती है, मुझे कहने में संकोच नहीं होगा, क्योंकि जैसा मैं अभी सुन रहा हूं या पूर्व में कभी जैसा सुना है, वास्तव में वैसा ही जैन धर्म है। इसकी एक एक बात हमारी बहुत महत्वपूर्ण और तथ्यपूर्ण है। आज विषय पूर्व वक्ता ने जैन गणित के विषय पर रखा। वैसे जैन गणित एक अलौकिक और लौकिक दोनों रूप में हमारे आचार्यों ने इसका प्रूपण किया है। लौकिक गणित की जानकारियां आपको और हमें कुछ अंशों में हो सकती हैं, लेकिन अलौकिक ऐसा गणित है शायद जिससे आप बहुत कम परिचित हों, मैं भी बहुत कम परिचित हूं। उन्होंने जो सूत्र दिए, अनुपम जैन से पूछा जाए कि एक और एक मिलाकर के कितने होते हैं, तो अभी जोड़ के बता देंगे कि दो हो जाएंगे। यदि थोड़ा सा और कर दें तो कह देंगे एक और एक मिला देंगे तो 11 हो सकते हैं। लेकिन इसके बाद में भी जहां एक और एक दो मिल जाते हों, वहां दो नहीं 11 नहीं, वहां तो अनंत हो सकता है। जहां एक और एक दो मिल जाते हैं वहां संसार का निर्माण हो सकता है। जब एक व्यक्ति गृहस्थ जीवन के बंधनों में बंधता है, एक से दो होता है, तब उसका संसार का निर्माण होता है। एक और एक को जोड़ देने से अनंत भी बन सकता है, अनंत संसार का निर्माण भी हम कर सकते हैं। ये भी एक गणित है, हमारे जीवन का गणित है। और एक में से एक घटा देने पर 0 आ जाएगा। जो हमने एक के साथ में दूसरे का संबंध बैठा लिया है, हमारा जो एक तत्व जीव तत्व था, उसके साथ में एक दूसरे तत्व का समन्वय होगा, एक अजीब तत्व जिसे हम पुद्गल कहते हैं, जैसा कि अभी पूर्व वक्ता समझा रहे थे, इन दो तत्वों का मिश्रण होगा, वो संसार हो गया। अब ये दोनों तत्व यदि एक दूसरे में से मानस कर दिए जाए तो कुछ भी नहीं बचेगा, जीव का अस्तित्व तो अलग हो जाएगा, पुद्गल का अस्तित्व तो अलग रह जाएगा, और दोनों की पृथक करने की क्रिया ही हमें सीख लेनी है कि कैसे हम अपनी आत्मा को कर्म पदगुणों से पृथक कर सकें और उस अलौकिक गणित के माध्यम से अपनी आत्मविद्या की श्रेणियां जो चरम ऊंचाइयां हैं उनको छू सकें, जो हमारी आत्मा की आनंद की अनुभूति हमें आने वाली है, जिसको रोकने वाला एक कर्म है, इसको दूर करने की पद्धति हमारी एक जैन गणित के माध्यम से हमें प्राप्त हो सकती है। एक आधुनिक विज्ञान और एक जैन विज्ञान, आधुनिक विज्ञान के विज्ञानवेत्ता बहुत से हुए, उनमें से एक विज्ञानवेत्ता का कथन बहुत अच्छा लगा मुझे। धर्म के विषय में और विज्ञान के विषय में जो उनका मत था वो थे आइंस्टीन। उन्होंने अपने एक बोध वाक्य में कहा कि विज्ञान के बिना धर्म लंगड़ा है और धर्म के बिना विज्ञान अंधा है। बस मुझे इतना सूत्र बहुत अच्छा लग गया। यदि विज्ञान और धर्म का जहां समन्वय हो जाए, बस मान लेना वही वीतराग विज्ञान है। और ऐसे ही वीतराग विज्ञान के लिए हमारे यहां प्रणाम किया गया है, उसे आदर दिया गया है। वह वीतराग विज्ञान की परंपरा ही इस विज्ञान संगोष्ठी के माध्यम से रखी गई है कि हम वहां तक पहुंच सकें। लेकिन वहां के पहुंचने के पहले हमें कुछ और जानकारियां लेनी होंगी, वो हम इन आगंतुक विद्वानों के माध्यम से जान सकेंगे। जानना कुछ नहीं है, एक छोटी सी और घटना सुना दूं, बात स्पष्ट हो जाए जीवन के गणित के विषय में, जानने के विषय में, कि हम सब कुछ जानने के उपरांत, जैसे महाराज जी ने सुबह कहा था कि जानने के लिए सब कुछ है लेकिन करने के लिए तो तीन ही बातें हैं, उसी में एक बात और जोड़ लीजिए आप कि सब कुछ जान लेने के बाद में कुछ हमें अपने लिए जानने के लिए भी रखना है। अभी तक हमने बहुत कुछ शास्त्रों का अध्ययन किया होगा, बहुत सारी पुस्तकों का पठन पाठन किया है, लेकिन और उनके विषय में जो जो तत्व तो हमारे सामने आए उनका राई रत्ती हमारे पास लेखा जोखा है, लेकिन ये सब पढ़ लेने के उपरांत जिसे हमें पढ़ना चाहिए शायद उसे हम भूल जाते हैं। दूसरे को नहीं पढ़ना है, हमें अपने आप को पढ़ने का प्रयास करना है। लेकिन अपने आप को पढ़ने का प्रयास बिना शास्त्र के पढ़े बिना शायद सबको संभव नहीं हो सकता। इसलिए शास्त्रों का अध्ययन आवश्यक है, लेकिन शास्त्रों के अध्ययन में ही अटक करके नहीं रह जाना, उसके आगे भी हमें एक कदम बढ़ाना है अपने आप को पढ़ने का कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्या करता हूं, क्या करना चाहिए, क्या करने से क्या होता है और क्या करने से कहां पहुंच जाऊंगा। यदि इतने प्रश्नों के बाबत यदि अपने आप को पढ़ने का हमने प्रयास किया तो शायद संभव है कि हमारी ये गोष्ठी, ये हमारा शास्त्र का स्वाध्याय, ये सब कुछ सार्थक है। और पढ़ना तो वही है कि इसमें से क्या करना है क्या नहीं करना है। एक सूफी संत हुए हैं, बस एक मिनट में मैं अपनी बात कह दूं, मेरे लिए इतना ही समय था। उन्होंने अपने ही शिष्य से एक दिन पूछ तो लिया, वैसे भी गुरु अपने शिष्यों को बहुत कुछ देते रहते हैं, ज्ञात हो या अज्ञात दोनों रूपों में अपने शिष्य के लिए बहुत कुछ प्रदान कर देते हैं। एक दिन उन सूफी संत ने अपने शिष्य से एक प्रश्न कर दिया कि बस बताओ कि अक्लमंद आदमी की पहचान कैसे की जाए। तो शिष्य ने एक ही उत्तर दिया कि नेकी वधि का तमीज कर सके वही अक्लमंद की एक पहचान है। लेकिन ये उत्तर सुनने के बावजूद भी उनके वे गुरु संतुष्ट ना हो सके। उन्होंने कहा कि ये उत्तर उतना पर्याप्त नहीं है, इसके आगे भी और कुछ होना चाहिए। नेकी वधि का काम तो हमारे यहां के मनुष्य, प्रत्येक प्राणी, चाहे वह मनुष्य हो या पशु पक्षी, अच्छा बुरा सबके लिए ज्ञात होता है, लेकिन इससे अकलमंद की पहचान नहीं की जा सकती। शिष्य ने पुनः प्रश्न किया कि गुरुवर आप ही बताएं कि अकलमंद की पहचान क्या है। तब उन्होंने कहा दो अच्छी बातों में से कौन अच्छी बात है और दो बुरी बातों में से कौन सबसे ज्यादा बुरी है, इसकी पहचान जिसके लिए है वो अकलमंद है। अच्छा बुरा तो सब जानते हैं, लेकिन दो अच्छे में से सबसे अच्छा क्या है वो हमें ग्रहण करना चाहिए, और दो बुरी बात में से सबसे बुरा क्या है उसे हमें छोड़ देना चाहिए, यही अकलमंद की पहचान है। आप सब इस विज्ञान संगोष्ठी में उपस्थित हुए, आप भी अच्छे और बुरे की पहचान करके अच्छे को करने का और बुरे कार्य के छोड़ने का प्रयास करें, ये आपकी गोष्ठी के यहाँ उपस्थित होने की सार्थकता होगी। और यहाँ आगत विद्वानों के द्वारा जो आलेख पढ़े जा रहे हैं, अभी अभी डॉक्टर अनुपम जैन ने जो अपनी बात रखी, वास्तव में ऐसा कुछ साहित्य जो अप्रकाशित आज भी है बहुत महत्वपूर्ण है। आज समाज के कितने ही लोग मंदिर और मूर्ति की प्रतिष्ठाओं में लाखों रुपया खर्च कर देते हैं, लेकिन यदि उनसे कहा जाए कि कोई जैनाचार्य की अप्रकाशित एक कृति है, इसे प्रकाशित कराना है, आपका क्या सहयोग है, तो वो चुप हो जाता है। मेरा कहना है कि जितनी अभिरुचि आपकी मूर्ति और मंदिर के निर्माण में है, उतनी ही साहित्य के प्रकाशन में आपकी हो, इसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।
बीजांकुर जनना भव बीजांकुर जनना रागाद्याक्षयमुपागतायस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै। जो विद्यादिसागर सुती, जो विद्यादिसागर सुती गुरु हैं जितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने, पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने, पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरु और विद्यासागर मुनि महाराज की।
बहुत सारे प्रश्नों के बीच कोई एक समाधान खोज पाना बहुत कठिन होता है, पर मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि अलौकिक गणित शायद ऐसे ही है कि बहुत सारे प्रश्नों का भी समाधान एक ही हुआ करता है। यहां तो एक में से आठ घटाइए तब भी एक रहता है, यहां तो एक में आठ जोड़ दीजिए तो अनंत बन जाता है, एक में से एक घटाइए तब भी एक रह जाता है, और एक में एक जोड़ दीजिए तब भी अनंत ही होता है। ये बड़ा अलौकिक गणित है। न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति विभु, ये गीता का वाक्य, यहां से शुरू होती है बात। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, यहां जाके पूरी हो जाती है बात, वहीं से शुरू हुई वहीं जाकर के पूरी हो जाती है। किसी ने सृजन नहीं किया, ये जो दिखाई पड़ता है लोक, उसका ना कोई इसका करता है, ना कोई इसको धारण करने वाला रक्षक है, ना कोई इसको नष्ट करने वाला शंकर है, तब फिर क्या है? सर्वधर्मान परित्यज्य, छोड़ दो सब विकल्प, सब विकल्प छोड़ दो, सारे प्रश्नों का समाधान है माम एकम शरणम ब्रज, वो मैं कौन है। लेकिन सवाल ये है, सवाल सिर्फ इतना है कि वो एक कौन है जो कि सारे प्रश्नों का समाधान है, वो हमसे जुदा नहीं है, वो हमसे विभक्त नहीं है, अगर हम भक्त हैं तो वो हमसे संलग्न है, वो अविभक्त है। अनडिवाइजेबल पार्टिकल इज ए एटम, अल्टीमेट पार्टिकल इज ए एटम, चाहे विज्ञान की भाषा में बोलिएगा चाहे धर्म की भाषा में बोली जाएगा, जो अनडिवाइजेबल है, जिसको और अधिक डिवाइड नहीं किया जा सकता, चाहे नेति नेति का श्रद्धान ले आइएगा कि हटाते जाओ वो जो कि तुम नहीं हो, हटाते जाओ वो सब, और फिर आखिरी में क्या बने बचेगा, डिवाइडेशन के बाद क्या बचेगा, मैथमेटिक्स ही तो है, डिवाइड करते जाओ, लेस करते जाओ, माइनस करते जाओ, क्या बचेगा शेष, कितना भी घटाने के बाद बचता है जो एग्जिस्ट करता है वो बचता है, जो एग्जिस्ट ही नहीं करता वो क्या शेष रहेगा, और जो एग्जिस्ट करता है एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, कैन नॉट बी क्रिएट, तब फिर हमें कहना पड़ेगा कि वो जो शेष ही रहता है जो कभी न मरता है न जीवित होता है वो शाश्वत है। ये साइंस ऐसा साइंस है, ये गणित ऐसा अलौकिक गणित है, इसकी खोज के लिए हमें शायद विज्ञान की जरूरत है, और विज्ञान को इसकी खोज के लिए शायद धर्म की जरूरत है। इसलिए मैंने आपसे पहले कह दिया था कि विज्ञान और धर्म दो अलग अलग चीजें नहीं हैं, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हमारे ओपिनियन पे डिपेंड करता है कि हम किस ढंग से देखते हैं। मैंने आपको सिर्फ वानगी के तौर पर ये चीज कही है, फिर अपन बैठेंगे। हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि आप सोचें कि हमने तो इतने मन बना करके और इतनी मेहनत करी, कागज पर लिखा, लिखना सीखने में कितना समय लगा होगा बताइए, और आपने लिखा तो फिर बैठेंगे और फिर शायद रामचरितमानस भी खोलेंगे कि जो जस करई सो तस फल चाखा, तब पूरी कर्म फिलॉसफी, पूरे कॉर्मोज और पूरी एटॉमिक थ्योरी, इधर से कर्म फिलॉसफी जेनिन की, इधर से एटॉमिक थ्योरी जो आज हो रही है कि अगर हम बॉम्बार्डी करें यूरेनियम पर तो रेडियम में कन्वर्ट हो जाता है, ये क्या है, ये फ्यूजन और फिशन की प्रोसेस क्या है, ये कॉर्मोज जब इंटरमिगल करते हैं सोल के साथ में तब क्या एनर्जी क्रिएट होती है, जब इनका विखंडन होता है, जब मुक्ति होती है, तब कैसे ये भौतिक शरीर दिखाई देने वाला और कैसे कपूर की तरह उड़ जाता है, और आत्मा जो प्योर एग्जिस्टेंस है उसमें कैसे जाकर के, चाहे उसको आप लोकाकाश और अलोकाकाश की सीमा रेखा कहें, चाहे ब्लैक होल कहें, ये बात की चीज है, लेकिन मुक्त कैसे हो जाती, ये फिलॉसफी भी जैन धर्म की है। कर्म के क्रियाकलापों का लेखा जोखा कार्मण शरीर रखता है, आज का विज्ञान स्वीकार करता है। विज्ञान की भाषा और धर्म की भाषा, दोनों की भाषा अलग अलग है। जब भी इनको हम भाषा में बांधते हैं ये हमारे लिए झूठे हो जाते हैं। अज्ञे ने तो सीधा लिखा कि सत्य लिखता रहा और सब झूठ करता रहा। जब भी धर्म को कहा जाएगा उसकी सीमा है, जब भी विज्ञान को कहा जाएगा उसकी सीमा है, लेकिन जब विज्ञान ऊंचाइयों को छूता है तब शब्दातीत और संख्यातीत हो जाता है, अनंत तक पहुंच जाता है, और जब धर्म की शुरुआत ही होती है भाषातीत से धर्म शुरू होता है। रिलीजन इज नॉट इन डॉगमा, नॉट इन प्रिंसिपल, नॉट इन थॉट्स, नॉट इन इंटेलेक्चुअल आर्गुमेंट्स, रिलीजन इज इन रियलाइजेशन। अनुभव कोई अनुभव की चीज है, धर्म अनुभूति की चीज है, किसी प्रिंसिपल में उसको बांधा नहीं जा सकता। अगर हम ग्लॉस कॉस्केट में एक प्रयोग करके ये साबित कर दें कि ये ब्रेक हो गया और आत्मा निकल गई तो बड़ा मजा है, फिर पदार्थ की तरह हमने आत्मा को पा लिया, फिर तो वो आत्मा कोई बहुत बड़ी चीज नहीं हुई, हम परख नदी में भी उसको पैदा कर सकते हैं, और फिर तो वो सनरेस से भी ज्यादा आपके कंक्रीट हो गई, बहुत ज्यादा स्थूल हो गई, सनरेज भी ग्लास में से निकल जाते हैं, और आप कह रहे हैं कि ग्लास कास्केट को तोड़ करके आत्मा निकल गई बाहर, ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा हमें। अभी साइंस को समझना पड़ेगा, दोनों तरह की साइंस को। बहुत आसान है ये कहना कि जैन दर्शन में तो पृथ्वी रुकी हुई है, सूर्य घूमता है, और विज्ञान तो ये मानता है कि सूर्य रुका हुआ है और पृथ्वी घूमती है, लेकिन जरा सा कोई साइंटिस्ट होगा तो वो कहेगा कि दोनों साइंटिस्ट हैं, एक के कैलकुलेशन इस बात पे डिपेंड करते हैं, और दोनों के कैलकुलेशन किस बात पे डिपेंड करते हैं, दोनों ने कैलकुलेशन किए हैं तो एक को रोटेट माना है और एक को स्टेबल माना है, विदाउट स्टेबिलिटी और रोटेशन के कैलकुलेशन हो ही नहीं सकता, दोनों साइंटिस्ट हैं। सवाल सिर्फ इतना है कि सन रोटेट होता है या कि अर्थ रोटेट होता है, सवाल इस बात का, ये हम खोजेंगे। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि हमने किसी चीज को अंतिम कह दिया, विज्ञान कभी किसी चीज को अंतिम नहीं कहता और धर्म ने भी कभी किसी चीज को अंतिम नहीं कहा, जब तक कि हम उसको प्राप्त न कर लें तब तक वो अंतिम नहीं होता, हमारे लिए अंतिम नहीं हो सकता, भगवान महावीर स्वामी के लिए वो चीज अंतिम हो गई, हमारे लिए हम अपने प्रयोग में लाएंगे तब वो चीज हमारे लिए अंतिम होगी। ये कभी भी ध्यान रखिएगा कि दोनों की अप्रोच पर ध्यान रखिएगा, बहुत बाहरी स्ट्रक्चर पर आप मत जाइएगा। और एक जीन्स, आज तो जीनिया गेट पैदा हो गए हैं, बहुत छोटे छोटे साइंटिस्ट नहीं, आप तो जीनिया गेट, आपके जीन्स चेंज कर देंगे, दूसरा आदमी पैदा कर देंगे, जैसा बनाना चाहेंगे वैसा पैदा कर देंगे। ये क्या चीज है? ये कुछ नहीं है, नाम कर्म की 93 प्रकृतियां हैं। आप चाहे उसको साइंस की भाषा में जीन्स कहिएगा, चाहे बिल्ट इन प्रोग्राम, चाहे ब्लूप्रिंट कहिएगा, चाहे कार्मण शरीर कहिएगा, घबराइएगा मत कि साइंस में कहां लिखा हुआ है। ब्लूप्रिंट लिखा है, हम जब यहां से मरेंगे तब हम एक अपना ब्लूप्रिंट लेके जाएंगे यहां से, बिल्ट इन प्रोग्राम। अब आगे जाकर के हाउ टू कंस्ट्रक्ट योर सेल्फ, कैसे हमें अपने को बनाना है, वो पूरा ब्लूप्रिंट हमारे साथ में जाएगा। उसी का नाम तो तैजसो कारमान शरीर है। नीरज जी, तैजस शरीर पर थोड़ा सा गड़बड़ में, नहीं गड़बड़ में नहीं, मुश्किल में पड़ गए थे। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, डाइजेस्टिव जूसेस और डाइजेस्टिव एनर्जी क्या चीज है, वो हमारा तैजस है। जठराग्नि का नाम तैजस है, जो ओज और वो देता है वो परिभाषा मत दीजिएगा। जठराग्नि जो हमारे भीतर काम करती है, और उस जठराग्नि को मैनेज करने के लिए हमारे यहां स्थिर और अस्थिर नाम कर्म है। बात पित्त और कफ की प्रकृति को जो एक जैसा बनाए रखे वो स्थिर है, और जो डगमगा दे वो अस्थिर नाम कर्म है। ये सब एक दूसरे के साथ जुड़ा है। थोड़ी सी खुर्दबीन लेकर के, कौन सी वाली, ये बाहर वाली भी और ये भीतर वाली भी, इन दोनों से शोध करना पड़ेगा। और ये इसीलिए बुलाया गया है, किसी निष्पत्ति के लिए नहीं बुलाया गया है, इन्वेस्टिगेशन के लिए साइंटिस्ट आए, किसी निष्पत्ति को यहां डिक्लेरेशन करने नहीं आए कि ऐसा ऐसा है, नहीं, ऐसा ऐसा हो सकता है। ए प्रोबेबल आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज द हाइपोथेसिस, एक प्रोबेबल आंसर हो सकता है क्वेश्चन का, एक हाइपोथेटिकल हम यहां परिकल्पना तो कर ही सकते हैं कि ऐसा संभव है कि दर्शन में, जैन धर्म की भाषा में जिस चीज को हमने आपके कार्मण शरीर कहा है, वो हमारे जीन्स हैं, हमारे संस्कार सूत्र हैं, हमारे क्रोमोसोम्स हैं। ये बात जरूरी है कि कल के दिन जीन्स और क्रोमोसोम्स, जैसा कि अनुपम जी ने कहा कि टर्मोलॉजी चेंज होगी, तो हम अभी रोजमर्रा के जीवन में उस टर्मोलॉजी को यूज नहीं करेंगे, पर हम अपने समझने के लिए तो समझ ही सकते, हमारी कितनी सी अप्रोच है बताइएगा। जितना जितना हम आगे बढ़ते जाते हैं उतना उतना हम पाते चले जाते हैं और समृद्ध होते चले जाते हैं। दो बातें आपके पास थीं, दो बातें मेरे पास थीं, मैंने दो आपको दी, आप रख लें तो आपके पास चार हो जाएंगी, आपने दो मुझे दी, मैं रख लूं तो चार हो जाएंगी, और मैं आपकी दो बातें रिटर्न कर दूं और पूरी एनर्जी इस बात में लगा दूं कि आपकी बातें असिद्ध कर दूं, तो आप भी पूरी एनर्जी लगा देंगी कि मेरी दो बातें असिद्ध कर दें, दोनों के पास खाली हाथ रह जाएंगे, आपकी दो भी खत्म मैंने कर दी और मेरी दो आपने खत्म कर दी, दोनों खाली, नहीं आपकी दो मेरे पास, मेरी दो आपके पास। हम तो, हमने सुबह ही कहा था कि हम सिंथेसिस में विश्वास रखने वाले लोग हैं, एनालाइज करते हैं और फिर सिंथेसाइज भी करते हैं, हम उस चीज को जोड़ भी देते हैं, हम तोड़ तोड़ के देखते हैं और फिर बाद में उसको जोड़ देते हैं। साइंस ऑफ सेपरेशन, ये जो इन्होंने लिखा है कि जैन दर्शन में क्या आत्मा और कर्म मिलकर एक हो जाते हैं, इसको विज्ञान में कुछ कहते हैं क्या, क्या इस तरह की विज्ञान ने भी कोई प्रक्रिया दी है? पूरा पूरा एटॉमिक थ्योरी इसी पे टिकी हुई है, मॉलिक्यूल्स कैसे फॉर्म होते हैं और एटम कैसे बनता है, ये पूरी की पूरी प्रक्रिया और कुछ नहीं है, वो हमारे कॉर्मिक कर्म थ्योरी है, कैसे कॉर्मोज आकर के इंटरमिगल करते हैं, फ्यूज हो जाते हैं आत्मा के साथ, और जब वो फ्यूज हो जाते हैं आत्मा के साथ और जब वो विखंडित होते हैं तब क्या प्रक्रिया होती है, इसको अभी समझने की आवश्यकता है। शायद कोई एक लेख इस पे भी आने वाला है, अगले दिनों में अपन उस चीज को समझेंगे। और एक चीज और कि परमात्मा पदार्थ में, जहां हम डिवाइड करते करते एटम तक पहुंचते हैं, मानिए आत्मा में हम डिवाइड करते करते परमात्मा तक पहुंचते हैं, ये गणित है। पदार्थ को हम जितना डिवाइड करेंगे वो अल्टीमेट लास्ट एक पार्टिकल होगा, उसको हम कहेंगे एटम। इसी तरह हम आत्मा में से जो जो भी एक्स्ट्रा फॉरेन मटेरियल है उसको हम अलग करते जाएंगे, तब जो ओरिजिनल की बचेगी वो हम उसको परमात्मा कहते हैं। गॉड प्लस डिजायर इज इक्वल टू ह्यूमन, ह्यूमन माइनस डिजायर इज इक्वल टू गॉड। बहुत सीधा सा फॉर्मूला, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आदमी के साथ में जो डिजायर, जो उसकी आकांक्षाएं, जो उसकी कामनाएं, जो उसने चाहा है, वो जो उसके साथ अटैच हो जाता है, हालांकि पूरा नहीं हो पाता जो हम चाहते हैं, लेकिन हमारा चाहने अकेले से वो हमारे साथ अटैच हो जाता है, इसी का नाम तो कर्म फिलॉसफी, उसकी वजह से और फिर हम यहां भटकते रहते हैं। जब हम उसको हटा देते हैं तो हम अपनी प्योर स्टेज में आ जाते हैं। इतना ही मेरे ख्याल से पर्याप्त होगा। और वो स्थिति क्या बनती होगी सिद्धालय में जबकि हम कर्म को अपने आत्मा से हटा देते हैं, तो लिखा हुआ है तीन शब्द आए हैं, ओमनी साइंस, ओमनी प्रेजेंट और ओमनी पोटेंट। तीनों चीजें हमें आज विज्ञान इस पर काम कर रहा है। जो पूछा गया है कि काम कर रहा है कुछ, इस पर काम कर रहा है कि क्या स्थिति है ओमनी प्रेजेंट, प्रेजेंट एवरीवेयर। ऐसा संभव है क्या, कोई ऐसा व्यक्ति है जो हर जगह उपस्थित है? उसी का नाम तो परमात्मा है। प्रेजेंट एवरीवेयर मतलब जिसका ज्ञान राई व्यक्ति जानता है, जो अपने ज्ञान के माध्यम से तीनों लोकों को जान लेता है, वो हर जगह उपस्थित, उसकी आंख हर जगह है, उसके पूरे शरीर में आंख है। ये तो हमारे आचार्य ने लिखा है कि आगम चक्षु साहू, साधु की आंख यदि आगम है तो देवताओं की आंख अवधि ज्ञान है, इन बैठे हुए संसारियों की आंख ये चर्म चक्षु है, और सिद्ध परमात्मा की आंख तो सारा उनका शरीर है। ज्ञान चक्षु ये ओमनी प्रेजेंट है, हर जगह उपस्थित है। और ओमनी साइंस नोइंग एवरीथिंग, ऐसा कोई है जो कि सब कुछ जानता हो? मैंने आपसे कहा था कि जो एक गम जाने ते सब गम जाने, जो एक गम अभी ना जाने ते सब गम अभी ना जाने। जो एक को जान लेता, अपनी आत्मा को जान लेता है, अपनी प्योर एग्जिस्टेंस को रियलाइज कर लेता है, उसको छू लेता है, मानिएगा वो सबको जान लेता है। और एक ओमनी पोटेंट ऑल पावरफुल, जिसको कि हम परम सत्ता बोलते हैं, वो भी वही स्थिति है। आप कभी सोचिएगा कि जब हम कोई चीज फ्यूज करते हैं तो उसके बाद एनर्जी क्रिएट होती है, और जब कोई चीज फिशन होगा उसका जब विखंडित होगी तब क्या एनर्जी नहीं क्रिएट होगी? एटॉमिक एटम बम तो इसी थ्योरी बने हुए हैं। और फिर हमारे अंदर कौन सी ऊर्जा पैदा होगी, और वो ऊर्जा शायद सर्वशक्तिमान होगी, वो परम सत्ता, उसी का नाम है जो कि सर्वशक्तिमान है, जिसके आगे और बाकी सब ऊर्जाएं बहुत छोटी सी हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की भाषा में अगर आप ब्रह्मा विष्णु महेश को समझना चाहें तो बहुत सरल है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ये ब्रह्मा विष्णु उत्पाद वैधोम युक्तम सत की भाषा में समझ लीजिए। चाहे आप इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव फोर्स है, नेगेटिव एनर्जी है। प्रोटॉन क्या है, पॉजिटिव एनर्जी है, पॉजिटिव फोर्स है। और उसके बाद न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन तो लाइफ एनर्जी है, विटल पावर है, जो कि हमारे जीवन को चलाए रखती, ना इलेक्ट्रॉन ना प्रोटॉन दोनों का संयोजन है। ठीक इसी तरह ब्रह्मा हमारी सृष्टि के करने वाले, हम खुद हमारी आत्मा, और अपने को समाप्त करने वाले भी, अपने संसार को मिटाने वाले भी हम ही शंकर, और अपने जीवन की पूरी प्रक्रिया को चलाने वाले भी हम ही विष्णु, अगर ऐसा मान लें। लेकिन थोड़ा ठहरिएगा, श्रद्धा को धक्का ना पहुंच जाए। किसी ने अगर ये मान लिया हो कि कोई ऊपर है, कोई ऊपर है और जो सबकी देखरेख करता है, ऐसी श्रद्धा को धक्का मत पहुंचाइएगा। मैं नहीं पहुंचाऊंगा ऐसी श्रद्धा को धक्का, पर उसको बहुत गहरे में समझिएगा तो आप यहीं पहुंचेंगे कि ना कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति विभु। उस श्रद्धा को बिना धक्का पहुंचाए और आप धीरे से, ईश कृपा इतनी ही है कि मोरी तो से बनी ताते करत पुकार, कि हमारी तो आपसे बनी है, ऐसे हम पुकार कर रहे। और हम आपको जावी बताए देते, बुंदेलखंडी में यही बताए देते कि मुझ कारण के कारज सु आप, जाने सोचियो कि सब कछु आप ही कर दे हो, हमारे में हुई जो कछु हुई अकेले आप निमित्त बन, मुझ कारज के कारण सु आप, आपकी वजह से होगा, होगा मेरे भीतर होगा। घड़ा आप फोड़ सकते हैं और मैं आप में समाहित हो जाऊंगा, लेकिन ये मेरी एग्जिस्टेंस की बात है, मैं सिर्फ निमित्त बनाऊंगा आपके लिए और कार्य मेरे भीतर होगा। अगर हम ऐसी कर्म फिलॉसफी और ऐसे जैन दर्शन को समझें तो शायद कहीं ना कहीं हम बहुत अच्छी जगह पहुंचेंगे, और वो बहुत अच्छी जगह तो सिद्धालय ही है। हम सबका उद्देश्य वहीं तक पहुंचने का है। आज के लिए शायद हमें इतना ही सीखना पर्याप्त होगा, बहुत सारी चीजें हैं, फिर बैठेंगे फिर सीखेंगे। सवाल इस बात का है कि कौन कितना सीख पाता है, कौन कितना सुन पाता है। कई कई बार तो ऐसा होता है कि हम कान खुले रखने के बाद भी सुन नहीं पाते हैं, और कई कई बार ऐसा होता है कि मस्तिष्क होने के बाद भी हम समझ नहीं पाते हैं। इसके पीछे कोई साइंस है क्या? आखिर वो क्या है। कोई जल्दी समझ लेता है, कोई देर से समझ पाता है, कोई बिल्कुल नहीं समझ पाता है, कोई सुनते हुए भी नहीं सुन पाता है। इस सब के पीछे क्या है? इस सब के पीछे अगर हमारे पुराने संस्कार हैं तो वो तो है ही, लेकिन हमारा वर्तमान का पुरुषार्थ भी उसके साथ में है। कुशलेषु अनादरः प्रमादः, कुशलता में जो हम हैं यही हमारा प्रमाद है।
तीर्थंकरों के पंच कल्याणक मनाए व समोसरण की दिव्य ध्वनि सुनने का सौभाग्य भव्य जीवों को प्राप्त होता रहा है। काल चक्र के प्रभाव से वर्तमान समय में हिंसा, अराजकता, अन्याय, भ्रष्टाचार जैसा दूषित वातावरण अंधकार रूप में व्याप्त है, किंतु हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें गुरु रूप में ऐसे तेज प्रकाश पुंज का सानिध्य प्राप्त है। ऐसे गुरु दर्शन मात्र से मन का कलुष मिट जाए, ऐसी गुरुवाणी जैसे समुद्र में दिव्य ध्वनि, ऐसे गुरु परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी के परम शिष्य श्री क्षमासागर जी महाराज के चरणों में सत सत वंदन। आचार्य श्री जी के वचनों की सीढ़ी प्राप्त करने हेतु संपर्क करें ब्रह्मचारी श्री अजित वीर श्री दिगंबर जैन पंच बाल कीर्ति मंदिर विद्यासागर नगर बॉम्बे हॉस्पिटल के सामने एबी रोड इंदौर 10 दूरभाष कोड 0731 दूरभाष संख्या 2571851।
पतझड़ न रहे इसलिए बसंत चाहिए, पतझड़ न रहे इसलिए बसंत चाहिए, कुरीतियों का अब तो हमें अंत चाहिए। तंग घना अज्ञानता का छारना है गर, आज सागर जैसा संत चाहिए।